संबंध पूर्व श्लोक में कहे हुए ज्ञानी अर्थात प्रेमी भक्त की वास्तविकता और उसके भजन का प्रकार आगे के श्लोक में बताते हैं। बहूनाम जन्मनामन्ते ज्ञानवान् मां प्रपद्यते वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ। बहुत जन्मों के अंतिम जन्म में अर्थात मनुष्य जन्म में सब कुछ परमात्मा ही है। इस प्रकार जो ज्ञानवान मेरे शरण होता है वह महात्मा अत्यंत दुर्लभ है। व्याख्या बहुनाम जन्मनाम अंते, मनुष्य जन्म संपूर्ण जन्मों का अंतिम जन्म है। भगवान ने जीव को मनुष्य शरीर देकर उसे जन्म मरण के प्रवाह से अलग होकर अपनी प्राप्ति का पूरा अधिकार दिया है, परंतु यह मनुष्य भगवान को प्राप्त न करके राग के कारण फिर पुराने प्रवाह में अर्थात जन्म मरण के चक्र में चला जाता है। इसलिए भगवान कहते हैं अप्राप्य माम निवर्तन्ते मृत्यु संसार वर्तमनि, 9वें अध्याय का 3रा श्लोक। जहाँ भगवान आसुरी योनियों और नरकों के अधिकारियों का वर्णन करते हैं वहाँ दुर्गुण दुराचारों के कारण भगवत प्राप्ति की संभावना न दिखने पर भी भगवान कहते हैं माम अप्राप्य ही वो कौनते है ततो यान्ते दमांगतिम, 16:20। अर्थात मुझे प्राप्त किए बिना ही ये प्राणी अधम गति को चले गए। वे मरने के बाद मनुष्य जन्म में भी चले जाते तो कम से कम मनुष्य तो रह जाते, पर वे मेरी प्राप्ति का पूरा अधिकार प्राप्त करके भी अधम गति को चले गए। संतों की वाणी में और शास्त्रों में आता है कि मनुष्य जन्म अपना कल्याण करने के लिए मिला है, विषयों का सुख भोगने के लिए तथा स्वर्ग की प्राप्ति के लिए नहीं। ऐ तन कर फल विषयन भाई स्वर्ग स्वल्प अंत दुखदाई। इसलिए गीता ने स्वर्ग की प्राप्ति चाहने वालों को मूड और तुच्छ बुद्धि वाला कहा है, अविपश्चित है 2:42 और अल्पमेधसाम 7:23। यह मनुष्य जन्म संपूर्ण जन्मों का आदि जन्म भी है और अंतिम जन्म भी है। संपूर्ण जन्मों का आरंभ मनुष्य जन्म से ही होता है, अर्थात मनुष्य जन्म में किए हुए पाप 84 लाख योनियों और नरकों में भोगने पर भी समाप्त नहीं होते, बाकी रहते हैं। इसलिए यह संपूर्ण जन्मों का आदि जन्म है। मनुष्य जन्म में संपूर्ण पापों का नाश करके संपूर्ण वासनाओं का नाश करके अपना कल्याण कर सकते हैं, भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए यह संपूर्ण जन्मों का अंतिम जन्म है। भगवान ने 8वें अध्याय के 6 श्लोक में कहा है कि जो मनुष्य अंत समय में जिस जिस भाव का स्मरण करते हुए शरीर छोड़कर जाता है उस भाव को ही वह प्राप्त होता है। इस तरह मनुष्य को जिस किसी भाव का स्मरण करने में जो स्वतंत्रता दी गई है इससे मालूम होता है कि भगवान ने मनुष्य को पूरा अधिकार दिया है। मनुष्य के उद्धार के लिए भगवान ने अपनी तरफ से यह अंतिम जन्म दिया है। अब इसके आगे यह नए जन्म की तैयारी कर ले अथवा अपना उद्धार कर ले, इसमें यह सर्वथा स्वतंत्र है। इस बात को लेकर गीता मनुष्य मात्र को परमात्मा प्राप्ति का अधिकारी मानती है और डंके की चोट के साथ खुले शब्दों में कहती है कि वर्तमान का दुराचारी से दुराचारी पूर्व जन्म के पापों के कारण नीच योनि में जन्म हुआ पाप योनि और चारों वर्णों वाले स्त्री पुरुष ये सभी भगवान का आश्रय लेकर परम गति को प्राप्त हो सकते हैं। 9वें अध्याय के 30वें से 33वें तक। गीता ने 9वें अध्याय के 32वें श्लोक में ऐसा विचित्र पाप योनि शब्द कहा है जिसमें शूद्र से भी नीचे कहे और माने जाने वाले चांडाल, यवन आदि तथा पशु पक्षी, कीट पतंग, वृक्ष लता आदि सभी लिए जा सकते हैं। हाँ, ये बात अलग है कि पशु पक्षी आदि मनुष्यतर प्राणियों में परमात्मा की तरफ चलने की योग्यता नहीं है, परंतु परमात्मा के अंश होने से उनके लिए परमात्मा की तरफ से मनाही नहीं है। उनमें से बहुत से प्राणी भगवान और संत महापुरुषों की कृपा से तथा तीर्थ और भगवत धाम के प्रभाव से परम गति को प्राप्त हो जाते हैं। देवता भोगियों नहीं है, वे भोगों में ही लगे रहते हैं, इसलिए उनको अपना उद्धार करना है ऐसा विचार नहीं होता। परंतु वे अगर किसी कारण से भगवान की तरफ लग जाए तो उनका भी उद्धार हो जाता है। इंद्र को भी ज्ञान प्राप्त हुआ था, ऐसा शास्त्रों में आता है। भगवान की तरफ से मनुष्य मात्र का जन्म अंतिम जन्म है, कारण कि भगवान का यह संकल्प है कि मेरे दिए हुए इस शरीर से यह अपना कल्याण कर ले। अतः यह अपना कोई संकल्प न रखकर केवल निमित्त मात्र बन जाए तो भगवान के संकल्प से इसका कल्याण हो जाए। जैसे 11वें अध्याय के 34वें श्लोक में भगवान ने अर्जुन से कहा है, मेरे द्वारा मारे वे को तू ही मार दे, मया हतास्तम जहि, तू चिंता मत कर, मा व्यथिष्ठा, तू युद्ध कर, तेरी विजय होगी, युद्धस्व जेतासि। इसी तरह से भगवान ने कृपा करके मनुष्य शरीर दिया है। अगर मनुष्य भगवान से विमुख होकर संसार के राग में न फंसे तो भगवान के उस संकल्प से अनायास ही मुक्त हो जाए। भगवान का संकल्प ऐसा नहीं है कि साधक की इच्छा के बिना उसका कल्याण हो जाए। जैसे शाप या वरदान दिया जाता है वैसा ये संकल्प नहीं है। तो फिर कैसा संकल्प है? भगवान ने मनुष्य को अपना कल्याण करने की स्वतंत्रता इस मनुष्य जन्म में दी है। अगर ये प्राणी उस स्वतंत्रता का दुरुपयोग न करे, अर्थात भगवान और शास्त्रों से विपरीत न चले, कम से कम अपने विवेक के विरुद्ध न चले, तो उससे भगवान और शास्त्रों के अनुकूल चलना स्वाभाविक हो जाएगा। कारण कि भगवान और शास्त्रों से विपरीत न चलने पर दो अवस्थाओं में से एक अवस्था स्वाभाविक होगी, या तो वह शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि से कुछ नहीं करेगा, या केवल भगवान और शास्त्र के अनुकूल ही करेगा। कुछ नहीं करने की अवस्था में, कुछ करने की रुचि न रहने की अवस्था में मन, बुद्धि, इंद्रियों आदि के साथ संबंध विच्छेद हो जाता है। कारण कि कुछ न कुछ करने की इच्छा से ही कर्तृत्वाभिमान उत्पन्न होकर अंतःकरण और इंद्रियों के साथ संबंध जुड़ता है, और अपने लिए करने से फल के साथ संबंध जुड़ता है। कुछ भी न करने से न कर्तृत्व अभिमान होगा और न फलेच्छा होगी, प्रत्युत स्वरूप में स्वतः स्थिति होगी। शास्त्र की आज्ञा के अनुसार निष्काम भाव पूर्वक कर्म करने की अवस्था में करने का प्रवाह मिट जाता है और क्रिया तथा पदार्थों से संबंध विच्छेद हो जाता है। क्रिया और पदार्थ से संबंध विच्छेद होने से नई कामना होगी नहीं और पुराना राग मिट जाएगा तो स्वतः बोध हो जाएगा। तत् स्वयं योग संसिद्ध है, कालेन आत्मनि विन्दति। गीता में आया है, निष्काम भाव से विधि पूर्वक अपने कर्तव्य कर्म का पालन किया जाए तो अनादि काल से बने हुए संपूर्ण कर्म नष्ट हो जाते हैं। 4:23। ज्ञान योग से मनुष्य संपूर्ण पापों से तर जाता है। 4:36। भगवान भक्त को संपूर्ण पापों से मुक्त कर देते हैं। 18:66। जो भगवान को अज अनादि जानता है वह संपूर्ण पापों से मुक्त हो जाता है। 10:30। इस प्रकार कर्मयोग, ज्ञान योग और भक्ति योग तीनों योगों से पाप नष्ट हो जाते हैं। तात्पर्य यह निकला कि अंतिम मनुष्य जन्म केवल कल्याण के लिए ही मिला है। मनुष्य जन्म में सत्संग मिल जाए, गीता जैसे ग्रंथ से परिचय हो जाए, भगवान नाम से परिचय हो जाए, तो साधक को ये समझना चाहिए कि भगवान ने बहुत विशेषता से कृपा कर दी है, अतः अब तो हमारा उद्धार होगा ही, अब आगे हमारा जन्म मरण नहीं होगा। कारण कि अगर हमारा उद्धार नहीं होना होता तो ऐसा मौका नहीं मिलता, परंतु भगवान की कृपा से उद्धार होगा ही, इसके भरोसे साधन नहीं छोड़ना चाहिए। प्रत्युत तत्परता से और उत्साह पूर्वक साधन में लगे रहना चाहिए। समय सार्थक बने, कोई समय खाली न जाए, ऐसी सावधानी हरदम रखनी चाहिए, परंतु अपने कल्याण की चिंता नहीं करनी चाहिए, क्योंकि अब तक जिसने इतना प्रबंध किया है वो आगे भी करेगा। जैसे किसी ने भोजन के लिए निमंत्रण दे दिया, आसन बिछा दिया, आसन पर बैठा दिया, पत्तल दे दी, लोटे में जल भरकर पास में रख दिया, अब कोई चिंता करे कि यह व्यक्ति भोजन देगा कि नहीं, तो ये बिल्कुल गलत बात है। कारण कि अगर भोजन नहीं देता तो ये निमंत्रण ही क्यों देता, भोजन की तैयारी क्यों करता। परंतु जब इसने निमंत्रण दिया है, बुलाया है, तैयारी की है, तब उसको भोजन देना ही पड़ेगा। हम भोजन की चिंता क्यों करें? अब तो बस ज्यों ज्यों भोजन के पदार्थ आए त्यों त्यों उनको पाते जाए। ऐसे ही भगवान ने हमको मनुष्य शरीर दिया है और उद्धार की सब सामग्री सत्संग भगवान नाम आदि जुटा दी है, तो हमारा उद्धार हो गए। अब तो हम संसार समुद्र के किनारे आ गए, ऐसा दृढ़ विश्वास करके निमित्त मात्र बनकर साधन करना चाहिए। जिसके पूर्व जन्मों के पुण्य होते हैं वही भगवान की तरफ चल सकता है, ऐसा अगर माना जाए तो पूर्व जन्मों के पाप पुण्यों का फल तो पशु पक्षी कीट पतंग आदि योनि वाले प्राणी भोगते ही है, फिर मनुष्य में और उन प्राणियों में क्या फर्क रहेगा? भगवान का कृपा करके मनुष्य शरीर देना कहां सार्थक होगा, तथा मनुष्य जन्म की विलक्षणता महिमा क्या होगी? मनुष्य जन्म की महिमा तो इसी में ही है कि मनुष्य भगवान का आश्रय लेकर अपने कल्याण के मार्ग में लग जाए। वासुदेव सर्वम, महासर्ग के आदि में एक भगवान ही अनेक रूपों में होते हैं। सदैक्षत बहुश्याम प्रजा येति, और अंत में अर्थात महाप्रलय में एक भगवान ही शेष रह जाते हैं। शिष्यते शेष संज्ञा है। इस प्रकार जब आदि और अंत में एक भगवान ही रहते हैं तब बीच में दूसरा कहां से आया? क्योंकि संसार की रचना करने में भगवान के पास अपने सिवाय कोई सामग्री थी नहीं, वे तो स्वयं संसार के रूप में प्रकट हुए हैं, इसलिए ये सब वासुदेव है। जो चीज आदि और अंत में होती है वही चीज मध्य में भी होती है। जैसे सोने के गहने आदि में सोना थे और अंत में सोना रहेंगे, तो गहनों में दूसरी चीज कहां से आएगी? केवल सोना ही सोना है। मिट्टी से बनने वाले बर्तन पहले मिट्टी थे और अंत में मिट्टी हो जाएंगे, तो बीच में मिट्टी के सिवाय क्या है? केवल मिट्टी ही मिट्टी है। खांड से बने हुए खिलौने पहले खांड थे और अंत में खांड ही हो जाएंगे, तो बीच में खांड के सिवाय क्या है? केवल खांड ही खांड है। इसी तरह सृष्टि के पहले भगवान थे और अंत में भगवान ही रहेंगे, तो बीच में भगवान के सिवाय क्या है? केवल भगवान ही भगवान है। जैसे सोने को चाहे गहनों के रूप में देखें, चाहे पासे के रूप में देखें, चाहे बर्फ के रूप में देखें, है वह सोना ही। ऐसे ही संसार में अनेक रूपों में अनेक आकृतियों में एक भगवान ही है। जब तक मनुष्य की दृष्टि गहनों की तरफ उसकी आकृति की तरफ रहती है, उसी को महत्व देती है, तब तक यह सोना ही है, इस तरफ उसकी दृष्टि नहीं जाती। ऐसे ही जब तक मनुष्य की दृष्टि संसार की तरफ रहती है, उसी को महत्व देती है, तब तक सब कुछ भगवान है, इस तरफ उसकी दृष्टि नहीं जाती। परंतु जब गहनों की तरफ दृष्टि नहीं रहती, तब गहनों में सोने की भावना नहीं होती, प्रत्युत ये सोना ही है ऐसी भावना होती है। ऐसे ही जब संसार की तरफ दृष्टि नहीं रहती, तब संसार में भगवान की भावना नहीं होती, प्रत्युत सब कुछ भगवान ही है, भगवान के सिवा कुछ दूसरा है ही नहीं, ऐसी भावना होती है। कारण कि संसार में भगवान की भावना करने से संसार की सत्ता साथ में रहती है, संसार की भावना रखते हुए उसकी सत्ता मानते हुए उसमें भगवान की भावना करते हैं। अतः जब तक संसार की सत्ता मानते हैं, संसार को महत्व देते हैं, तब तक संसार में भगवान की भावना करते रहने पर भी वासुदेव सर्वम का अनुभव नहीं होता। ब्रह्मभूत मनुष्य निर्वाण ब्रह्म को प्राप्त होता है, 5:24। ब्रह्मभूत योगी को उत्तम सुख मिलता है, 6:27। ब्रह्मभूत भगवान की पराभक्ति को प्राप्त होता है और उस भक्ति से तत्व को जानकर उसमें प्रवेश करता है, 18:54-55। गीता की दृष्टि से तीनों ही अवस्थाएं हैं, अवस्थाओं में परिवर्तन होता है, परंतु वासुदेव सर्वम ये अवस्था नहीं है, प्रत्युत वास्तविक तत्व है, इसमें कभी परिवर्तन नहीं होता। ये जो कुछ संसार दिखता है सब भगवान का ही स्वरूप है, भगवान के सिवाय संसार की स्वतंत्र सत्ता थी नहीं, है नहीं और कभी होगी भी नहीं। अतः देखने सुनने और समझने में जो कुछ संसार आता है वह सब का सब भगवत स्वरूप ही है, भगवान की आज्ञा है। मनसा वत्सा दृष्टिया गृहते नैरपि इंद्रियैः अहमेव न मत्तोऽन्यद् इति बुद्ध्यत्व मञ्जसा। श्रीमद् भागवत 11वां स्कंद 13वां अध्याय 24वां श्लोक। मन से, वाणी से, दृष्टि से तथा अन्य इंद्रियों से भी जो कुछ ग्रहण किया जाता है वह सब मैं ही हूँ, मुझसे भिन्न और कुछ नहीं है, यह सिद्धांत आप लोग विचार पूर्वक समझ लीजिए। इस आज्ञा के अनुसार ही उस ज्ञानी अर्थात प्रेमी का जीवन हो जाता है, वह सब जगह भगवान को ही देखता है। योमाम पश्यति सर्वत्र सर्वंच मई पश्यति, 6:30। वह सब कुछ करता हुआ भी भगवान में ही रहता है, सर्वथा वर्तमानोपि सहयोगी मई वर्तते, 6:31। किसी को एक जगह भी अपनी प्रिय वस्तु मिल जाती है तो उसको बड़ी प्रसन्नता होती है। फिर जिसको सब जगह ही अपने प्यारे इष्ट देव का अनुभव होता है, जित देखो तित श्याम मई है, श्याम कुंज बन जमुना श्यामा, श्याम गगन घन घटा छई है, सब रंगन में श्याम भरो है, लोग कहती है बात नई है, हो बोरी के लोग नहीं की, श्याम पुतरिया बदल गई है, चंद्र सार रवि सार श्याम है, मृगमद सार काम विजयी है, नील कंठ को कंठ श्याम है, मनव श्यामता बेल बई है, श्रुति को अक्षर श्याम देखी अत दीप शिखा पर श्याम तई है, नर देवन की कौन कथा है, अलख ब्रह्म छवि श्याम मई है। उसकी प्रसन्नता का आनंद का क्या ठिकाना, उस आनंद में विभोर होकर भगवान का प्रेमी भक्त कभी हंसता है, कभी रोता है, कभी नाचता है तो कभी चुप होकर शांत हो जाता है। वाग गदगदा द्रवते यस्य चित्तम रुदत्य भीक्षणम हसति क्वचिच्च विलज्य उद्गायति नृत्यते च मद्भक्ति युक्तो भुवनम पुनाति। श्रीमद् भागवत, जिसकी वाणी मेरे नाम गुण और लीला का वर्णन करती करती गदगद हो जाती है, जिसका चित्त मेरे रूप गुण प्रभाव और लीलाओं को याद करते करते द्रवित हो जाता है, जो बारंबार रोता रहता है, कभी कभी हंसने लग जाता है, कभी लज्जा छोड़कर ऊंचे स्वर से गाने लगता है, कभी नाचने लगता है, ऐसा मेरा भक्त सारे संसार को पवित्र कर देता है। इस तरह उसका जीवन अलौकिक आनंद से परिपूर्ण हो जाता है। फिर उसके लिए कुछ भी करना जानना और पाना बाकी नहीं रहता है, सर्वथा पूर्ण हो जाता है। अर्थात उसके लिए किसी भी अवस्था में किसी भी परिस्थिति में कुछ भी प्राप्त करना बाकी नहीं रहता है। जो भक्ति मार्ग पर चलता है वह ये सत है और ये असत है इस विवेक को लेकर नहीं चलता, उसमें विवेक ज्ञान की प्रधानता नहीं रहती, उसमें केवल भगवत भाव की प्रधानता रहती है। केवल भगवत भाव की प्रधानता रहने के कारण उसके लिए ये सब संसार चिन्मय हो जाता है, उसकी दृष्टि में जड़ता रहती नहीं। भगवान में तल्लीनता होने पर भक्त का शरीर भी जड़ नहीं रहता, प्रत्युत चिन्मय हो जाता है। जैसे मीराबाई का शरीर चिन्मय होने से भगवान के विग्रह में लीन हो गया था। ज्ञान मार्ग में जहां सत असत का विवेक होता है वहां परिणाम में सत असत दो की सत्ता नहीं रहती, केवल सत स्वरूप ही रह जाता है। परंतु भक्ति मार्ग में सत असत सब कुछ भगवत स्वरूप ही हो जाता है। फिर भक्त भगवत स्वरूप संसार की सेवा करता है। सेवा में पहले तो सेवक सेवा और सेव्य तीन होते हैं, परंतु जब भगवत भाव की अत्यधिक गाढ़ता हो जाती है तब सेवक भाव की विस्मृति हो जाती है, फिर भक्त स्वयं सेवा रूप होकर सेव्य में लीन हो जाता है, केवल एक भगवत तत्व ही शेष रह जाता है। इस तरह है, भगवत भाव में तल्लीन वे भगवान के प्रेमी भक्त जहां कहीं भी विचरते हैं वहां उनके दर्शन स्पर्श भाषण आदि का प्राणियों पर बड़ा असर पड़ता है। जब तक मनुष्यों की पदार्थों में भोग बुद्धि रहती है तब तक उनको उन पदार्थों का वास्तविक स्वरूप समझ में नहीं आता, परंतु जब भोग बुद्धि सर्वथा छूट जाती है तब केवल भगवत स्वरूप ही देखने में आता है। मार्मिक बात, वासुदेव सर्वम, इस तत्व को समझने के दो प्रकार हैं, संसार का अभाव करके परमात्मा को देखना, अर्थात संसार नहीं है और परमात्मा है। दूसरा रूप है सब कुछ भगवान ही भगवान है, इसमें जो परिवर्तन दिखता है वो भी भगवान का ही स्वरूप, क्योंकि भगवान के सिवा उसकी कोई स्वतंत्र सत्ता ही नहीं है। उपर्युक्त दोनों ही प्रकार साधकों के लिए है। जिस साधक का पदार्थों को लेकर संसार में आकर्षण है उसको ये सब कुछ नहीं है केवल परमात्मा ही है, इस प्रणाली को अपनाना चाहिए। जिस साधक का पदार्थों को लेकर संसार में किंचन मात्र भी आकर्षण नहीं है और जो केवल भगवान के स्मरण चिंतन जप कीर्तन आदि में लगा रहता है उसको संसार रूप से सब कुछ भगवान ही है, इस प्रणाली को अपनाना चाहिए। वास्तव में देखा जाए तो दोनों प्रणालियां तत्व से एक ही है। इन दोनों में फर्क इतना ही है कि जैसे सोने में गहने और गहनों के नाम रूप आकृति आदि अलग अलग होते हुए भी सब कुछ सोना ही सोना जानना है, जहां पर संसार का अभाव करके परमात्मा को तत्व से जानना है वहां विवेक की प्रधानता है, और जहां संसार को भगवत स्वरूप माना है वहां भाव की प्रधानता है। निर्गुण उपासकों के लिए विवेक की प्रधानता होती है और सगुण उपासकों में भाव की प्रधानता होती है। संसार का अभाव करके परमात्म तत्व को जानना भी तत्व से जानना है और संसार को भगवत स्वरूप मानना भी तत्व से जानना है। कारण कि वास्तव में तत्व एक ही है, फर्क इतना ही है कि ज्ञान मार्ग में जानने की प्रधानता रहती है और भक्ति मार्ग में मानने की प्रधानता रहती है। इसलिए भगवान ने ज्ञान मार्ग में मानने को भी जानने के अर्थ में लिया है। इति मत्वा न सज्जते 3:28। और भक्ति मार्ग में जानने को भी मानने के अर्थ में लिया है 5:29, 9:13, 10:30, 7, 24, 27 और 41। इसमें एक खास बात समझने की है कि परमात्मा को जानना और मानना दोनों ही ज्ञान है तथा संसार को सत्ता देकर संसार को जानना और मानना दोनों ही अज्ञान है। संसार को तत्व से जानने पर संसार की स्वतंत्र सत्ता का अभाव हो जाता है और परमात्मा को तत्व से जानने पर परमात्मा का अनुभव हो जाता है। ऐसे ही संसार भगवत स्वरूप है ऐसा दृढ़ता से मानने पर संसार की स्वतंत्र सत्ता का अभाव हो जाता है और फिर संसार रूप से न दिखकर भगवत स्वरूप दिखने लग जाता है। तात्पर्य यह है कि परमात्म तत्व का अनुभव होने पर जानना और मानना दोनों एक हो जाते हैं। इति ज्ञानवान माम प्रपद्यते, जो प्रतिक्षण बदलने वाले संसार की सत्ता को मानते हैं वे अज्ञानी हैं, मूड हैं। परंतु जिनकी दृष्टि कभी न बदलने वाले भगवत तत्व की तरफ रहती है वे ज्ञानवान हैं, असम्मूढ़ हैं। ज्ञानवान कहने का तात्पर्य है कि वह तत्व से समझता है कि सब जगह है, सब में और सबके रूप में वस्तुतः एक भगवान ही है। ऐसे ज्ञानवान को ही आगे 15:19 में सर्ववित कहा गया है। ज्ञानवान की शरणागति अर्थार्थी आर्त और जिज्ञासु भक्तों की तरह नहीं होती है। भगवान ने ज्ञानी को अपनी आत्मा बताया है, ज्ञानी त्वात्मैव मे मतम 7:18। जब ज्ञानी भगवान की आत्मा हुआ तो ज्ञानी की आत्मा भगवान हुए। अतः एक भगवत तत्व के सिवा है दूसरी सत्ता ही नहीं रही। इसलिए ज्ञानी की शरणागति उन तीनों भक्तों से विलक्षण होती है। उसके अनुभव में एक भगवत तत्व के सिवाय कोई दूसरी सत्ता होती नहीं, यही उसकी शरणागति है। भगवान की दृष्टि में अपने सिवाय कोई अन्य तत्व है नहीं। मई सर्वमिदं प्रोतम सूत्रे मणिगणायव 7:7। जैसे सूत की माला में मणियों की तरह सूत की गांठ लगा दी तो माला में सूत के सिवाय अन्य क्या रहा, केवल सूत ही सूत रहा। हाँ, दिखने में गांठें अलग दिखती हैं और धागा अलग दिखता है, परंतु तत्व से एक ही चीज है, सूत ही सूत है। ऐसे ही परमात्मा संसार में व्यापक दिखते हैं परंतु तत्व से परमात्मा और संसार एक ही हैं। उनमें व्याप्य व्यापक का भाव नहीं है। अतः सब कुछ एक वासुदेव ही है, ऐसा जिसको अनुभव होता है वह भी भगवत स्वरूप ही हुआ। भगवत स्वरूप हो जाना ही उसकी शरणागति है। स महात्मा सुदुर्लभ है। बहुत से मनुष्य तो हमें परमात्मा की प्राप्ति करनी है इस तरफ दृष्टि ही नहीं डालते और ऐसा चाहते भी नहीं। जो इस तरफ दृष्टि डालते हैं वे भी उत्कंठा पूर्वक अनन्य भाव से अपने जीवन को सफल करने में नहीं लगते, वे अपना कल्याण करने में लगते हैं। वे भी मूर्खता के कारण परमात्मा प्राप्ति से निराश होकर अपने असली अवसर को खो देते हैं, जिससे वे परम लाभ से वंचित रह जाते हैं। इसी अध्याय के तीसरे श्लोक में भगवान ने कहा है कि मनुष्यों में हजारों और हजारों में कोई एक मनुष्य वास्तविक सिद्धि के लिए यत्न करता है, और यत्न करने वाले उन सिद्धों में कोई एक मनुष्य ही सब कुछ वासुदेव ही है ऐसा तत्व से जानता है। ऐसा तत्व से जानने वाला महात्मा अत्यंत दुर्लभ है। इसका तात्पर्य यह नहीं है कि परमात्मा दुर्लभ है, प्रत्युत सच्चे हृदय से परमात्मा की प्राप्ति के लिए लगने वाले दुर्लभ है। सच्चे हृदय से परमात्मा की प्राप्ति के लिए लगने पर मनुष्य मात्र को परमात्मा की प्राप्ति हो सकती है, क्योंकि उनकी प्राप्ति के लिए ही मनुष्य शरीर मिला है। संसार में सब के सब मनुष्य धनी नहीं हो सकते, सांसारिक भोग सामग्री सबको समान रीति से नहीं मिल सकती, परंतु जो परमात्म तत्व भगवान शंकर को प्राप्त है, सनकादिकों को प्राप्त है, नारद वशिष्ठ और देवर्षि ब्रह्मर्षियों को प्राप्त है, वही तत्व सब मनुष्यों को समान रूप से अवश्य प्राप्त हो सकता है। इसलिए मनुष्य को ऐसा दुर्लभ अवसर कभी खोना नहीं चाहिए। भगवान की यह एक अलौकिक विलक्षणता है कि वे भूखों के लिए अन्न रूप से, प्यासे के लिए जल रूप से, और विषयी के लिए शब्द स्पर्श रूप रस और गंध रूप से बनकर आते हैं। वे ही मन बुद्धि इंद्रियां बनकर आते हैं, वे ही संकल्प विकल्प बनकर आते हैं, वे ही व्यक्ति बनकर आते हैं, परंतु साथ ही साथ दुख रूप से आकर मनुष्य को चेताते भी हैं कि अगर तुम इन वस्तुओं को भोग्य मानकर इनके भोक्ता बनोगे तो इसके फलस्वरूप तुमको दुख ही दुख भोगना पड़ेगा। इसलिए मनुष्य को शर्म आनी चाहिए कि मैं भगवान को भोग सामग्री बना रहा हूं, मेरे सुख के लिए भगवान को सुख की सामग्री बनना पड़ता है। भगवान कितने दयालु है कि यह प्राणी जो चाहता है भगवान वैसे ही बन जाते हैं। देखने सुनने और समझने में जो कुछ आ रहा है और जो मन बुद्धि इंद्रियों का विषय नहीं है वह सब भगवान ही है और भगवान का ही है, ऐसा मान ले, वास्तविकता से अनुभव कर ले तो मनुष्य विलक्षण हो जाता है। स महात्मा सुदुर्लभ है। एक बैरागी बाबा थे, वे गणेश जी का पूजन किया करते थे। उनके पास सोने की बनी हुई एक गणेश जी की और एक चूहे की मूर्ति थी। वे दोनों मूर्तियां तोल में बराबर थी। एक बार बाबा जी ने तीर्थों में जाने का विचार किया और वे उन मूर्तियों की बिक्री करने के लिए सुनार के पास गए। सुनार ने उन दोनों मूर्तियों को तोलकर दोनों के बराबर दाम बता दिए तो बाबा जी सुनार पर बिगड़ गए कि तू क्या तोल रहा है, गणेश जी तो देवता है और चूहा उनका वाहन है, पर तू दोनों का बराबर मूल्य बता रहा है, ये कैसे हो सकता है। सुनार बोला कि बाबा जी मैं गणेश और चूहे को नहीं खरीदता हूं, मैं तो सोना खरीदता हूं, सोने का जितना वजन होगा उसी के अनुसार उसका मूल्य होगा। अगर सुनार गणेश और चूहे को देखेगा तो उसको सोना नहीं दिखेगा, अगर सोने को देखेगा तो उसको गणेश और चूहा नहीं दिखेगा। परंतु सुनार न गणेश को देखता है न चूहे को, वे तो केवल सोने को देखता है। ऐसे भगवान के साथ अभिन्न हुआ महात्मा संसार को नहीं देखता है, वह तो केवल भगवान को ही देखता है। कोई एक संत रास्ते में चलते चलते किसी के खेत में लघु शंका करने बैठ गए। उस खेत के मालिक ने उनको देखा तो मतीरा माने तरबूजा चुराने वाला यही आदमी है, ऐसा समझकर पीछे आकर उसके सिर पर लट्ठी मार दी। फिर देखा कि ये तो बाबा जी है, अतः हाथ जोड़कर बोला, महाराज मैंने आपको पहचाना नहीं और चोर समझकर लाठी मार दी, इसलिए महाराज मुझे माफ कर दो। संत ने कहा, माफ क्या करना, तूने मुझे तो मारा नहीं, तूने तो चोर को मारा है। उसने कहा, महाराज अब क्या करूं। संत ने कहा, जैसी तेरी मर्जी हो वैसा कर। उसने संत को बैलगाड़ी में ले जाकर अस्पताल में भर्ती करा दिया। वहां मलम पट्टी करने के बाद एक आदमी दूध लेकर आया, बोला मारा दूध पी लो। संत ने कहा, तू बड़ा चालाक और होशियार है, तेरे बड़े विचित्र विचित्र रूप है, तू विचित्र विचित्र लीलाएं करता है। पहले तो तूने लाठी से मारा और अब कहता है दूध पी लो। उधर वो आदमी डर गया, वो कहने लगा, बाबा जी मैंने नहीं मारा। संत बोले, बिल्कुल झूठी बात है, मैं पहचानता हूं, तू ही था, तू ही मारा है, तेरे सिवा और कौन आए, कहां से आए, कैसे आए। पहले तो मारा लाठी से, अब आया दूध पिलाने, मैं दूध पी लूंगा, पर देख था तो तू ही। इस तरह बाबा जी तो अपनी वासुदेव सर्वम वाली भाषा में बोल रहे थे और वह सोच रहा था कि बाबा जी कहीं हमको फंसा न दे। तात्पर्य यह है कि संत केवल भगवान को ही देखते हैं कि लाठी मारने वाला, मरहम पट्टी करने वाला, दूध पिलाने वाला, सब वही है। महात्माओं की महिमा, जहां संत महात्माओं का वर्णन आता है वहां कहा गया है, पहला, जो ऊंचे दर्जे के तत्व की जीवन मुक्त महापुरुष होते हैं वे अभिन्न भाव और अखंड रूप से केवल अपने स्वरूप में अथवा भगवत तत्व में स्थित रहते हैं। उनके जीवन से, उनके दर्शन से, उनके चिंतन से, उनके शरीर का स्पर्श की हुई वायु के स्पर्श से जीवों का कल्याण होता रहता है। दूसरा, जो मनुष्य उन महापुरुषों की महिमा को नहीं जानते, उनके सामने वे महापुरुष अपने भावों से नीचे उतरते हैं तो जो कुछ कह देते हैं, जैसे संत महात्माओं ने ऐसा किया है, उनके किए हुए आचरणों और कहे हुए वचनों के अनुसार ही शास्त्र बनते हैं आदि। तीसरा, जब वे इससे नीचे उतरते हैं तो कह देते हैं कि संत महात्माओं की आज्ञा का पालन करना चाहिए। चौथा, जिनसे उपर्युक्त बातों का पालन नहीं होता, उन साधकों के सामने वे स्वयं ऐसा विधान कर देते हैं कि ऐसा करना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए। पांचवा, जब वे इससे भी नीचे उतरते हैं तो ऐसा करो और ऐसा मत करो ऐसी आज्ञा तक दे देते हैं। संतों की आज्ञा में जो सिद्धांत भरा हुआ है वो आज्ञा पालक में उतर जाता है। उनकी आज्ञा पालन के बिना भी उनके सिद्धांत का पालन करने वालों का कल्याण हो जाता है, परंतु वे महात्मा आज्ञा के रूप में जिसको जो कुछ कह देते हैं उसमें एक विलक्षण शक्ति आ जाती है। आज्ञा पालन करने वाले को कोई परिश्रम नहीं पड़ता और उसके द्वारा स्वतः स्वाभाविक वैसे आचरण होने लगते हैं। छठा, जो उनकी आज्ञा का पालन नहीं करते, ऐसे नीचे दर्जे के साधकों को वे कहीं कहीं कभी कभी शाप या वरदान दे देते हैं। इस परंपरा में देखा जाए तो पहले तो जो कुछ नहीं करते निरंतर अपने स्वरूप में ही स्थित रहते हैं, यह उन संत महापुरुषों का ऊंचा दर्जा हो गया। दूसरा, शास्त्रों ने ऐसा कहा, संत महात्माओं ने ऐसा किया, इस तरह का संकेत करने से उन संतों का दो नंबर का दर्जा हो गया। संत महात्माओं की आज्ञा का पालन करना चाहिए ऐसा कहने से संतों का तीसरे नंबर का दर्जा हो गया। ऐसा करना चाहिए और ऐसा नहीं करना चाहिए, इस तरह का विधान करने से उन संतों का चौथे नंबर का दर्जा हो गया। तुम ऐसा करो और ऐसा मत करो ऐसा कहना उन संतों के पांचवें दर्जे की बात हो गई। छठा साप और वरदान देना उन संतों के छठे दर्जे की बात हो गई। इन सब श्रेणियों में संत महापुरुषों का जो नीचे उतरना है उसमें उनकी क्रमशः अधिकाधिक दयालुता है। वे साप और वरदान दे देते हैं, ताड़ना कर दे, इसमें उन संतों का दर्जा दिखता तो नीचा है पर उसमें उनका अत्यधिक त्याग है। कारण कि उन्होंने जीव के उद्धार के लिए नीचा दर्जा स्वीकार किया, इसमें उनका लेश मात्र भी स्वार्थ नहीं है। ऐसे ही भगवान भी अपने स्वरूप में नित्य निरंतर स्थित रहते हैं, यह उनके ऊंचे दर्जे की बात है। परंतु वे जीव भगवान अत्यधिक कृपालुता के कारण कृपा के परवश होकर जीवों का उद्धार करने के लिए अवतार लेकर आदर्श लीला करते हैं। उनकी लीलाओं को देखने सुनने से लोगों का उद्धार होता है। भगवान और भी नीचे उतरते हैं तो उपदेश देते हैं, उससे भी नीचे उतरते हैं तो आज्ञा दे देते हैं, और उससे भी नीचे उतरते हैं तो शासन करके लोगों को सही रास्ते पर लाते हैं। उसमें वे नीचे उतरते हैं तो शाप और वरदान दे देते हैं, अथवा उसके और संसार के हित के लिए उसका शरीर से वियोग भी करा देते हैं। परिशिष्ट भाव 16वें श्लोक में भगवान ने अर्थार्थी, आर्थ, जिज्ञासु और ज्ञानी इन चार प्रकार के भक्तों द्वारा अपना भजन करने की बात कही थी। चतुर्विधा भजन्ते माम। उनमें ज्ञानी के भजन का क्या स्वरूप है इसको इस श्लोक में बताते हैं कि सब कुछ वासुदेव ही है, ऐसा अनुभव करना ही ज्ञानी का भजन है, शरणागति है। असली शरणागति वही है जिसमें शरणागत की सत्ता ही न रहे, प्रत्युत शरण्य ही रह जाए। सब कुछ भगवान ही है, यह वास्तविक ज्ञान है। ऐसे वास्तविक ज्ञान वाला महात्मा भक्त भगवान के शरण हो जाता है, अर्थात अपना अस्तित्व मिटाकर भगवान में लीन हो जाता है। फिर मैंपन नहीं रहता, अर्थात प्रेम वाला नहीं रहता, प्रत्युत केवल प्रेम स्वरूप भगवान रह जाते हैं, जिनमें मैं, तू, यह, वह चारों ही नहीं है। यही शरणागति का वास्तविक स्वरूप है। महात्मा शब्द का अर्थ है महान आत्मा, अर्थात अहम भाव, व्यक्तित्व, एक देशीयता से सर्वथा रहित आत्मा, जिसमें अहम भाव, व्यक्तित्व, एक देशीयता है। यहाँ वासुदेव पद पुल्लिंग में आया है, अतः यहाँ वासुदेव सर्व पद देना चाहिए, परंतु यहाँ सर्व पद न देकर सर्वम पद दिया गया है जो नपुंसकलिंग में है। अगर तीनों लिंगों सर्व, सर्वा और सर्वम का एक शेष किया जाए तो नपुंसकलिंग ही शेष रहता है। नपुंसकलिंग के अंतर्गत तीनों लिंग आ जाते हैं, अतः सर्वम पद में स्त्री, पुरुष और नपुंसक सबका समाहार हो जाता है। गीता में जगत, जीव और परमात्मा, इन तीनों के लिए पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग तीनों ही लिंगों का प्रयोग हुआ है। इसमें यह तात्पर्य निकलता है कि जगत, जीव और परमात्मा ये तीनों ही सर्वम शब्द के अंतर्गत है, अतः तीनों लिंगों से कही जाने वाली सब की सब वस्तुएं, व्यक्ति, परिस्थितियां आदि परमात्मा ही है। वासुदेव सर्वम, इसमें सर्वम तो असत है और वासुदेव सत है। असत का भाव विद्यमान नहीं है और सत का अभाव विद्यमान नहीं है। ना सतो विद्यते भावो, ना भावो विद्यते सत, दो का सोलवा। तात्पर्य है कि सत ही सत है, असत है ही नहीं। वासुदेव ही वासुदेव है, सर्वम है ही नहीं। परंतु कहने सुनने पढ़ने वाले साधकों की दृष्टि में सर्वम रहता है, अर्थात संसार रहता है, इसलिए भगवान सर्वम की धारणा मिटाने के लिए वासुदेव सर्वम कहते हैं। कर्मयोगी, ज्ञान योगी, ध्यान योगी, लय योगी, हठ योगी, राजयोगी, मंत्र योगी, अनासक्त योगी आदि अनेक प्रकार के योगी है जिनका शास्त्रों में वर्णन हुआ है, पर उनको भगवान अत्यंत दुर्लभ नहीं बताते हैं। प्रत्युत सब कुछ वासुदेव ही है, इसका अनुभव करने वाले महात्मा को ही अत्यंत दुर्लभ बताते हैं। भगवान संपूर्ण संसार के बीज है, यच्चापि सर्वभूतानां बीजम तद अहम अर्जुन है 10:39। बीजम माम सर्वभूतानां विद्धि पार्थ सनातनम 7:10। बीज से जितनी चीजें पैदा होती हैं, वे सब बीज रूपी होती हैं। जैसे गेहूं से पैदा होने वाली खेती को भी गेहूं ही कहते हैं। किसान लोग कहते हैं कि गेहूं की खेती बहुत अच्छी हुई है, देखो खेत में गेहूं खड़े हैं, गेहूं से खेत भरा है। परंतु कोई शहर में रहने वाला व्यापारी हो, वह उसको गेहूं कैसे मान लेगा? वह कहेगा कि मैंने बोरे के बोरे गेहूं खरीदे हैं और बेचे हैं, क्या मैं नहीं जानता क्या कि गेहूं कैसा होता है? यह तो एक घास है, डंठल है, पत्ती है, ये गेहूं नहीं है। परंतु खेती करने वाला जानकार आदमी तो यही कहेगा कि ये घास नहीं है जो पशु खाया करते हैं, ये तो गेहूं है। खेती तो गाय खा जाती है, तो कहते हैं कि तुम्हारी गाय हमारा गेहूं खा गई, जबकि उसमें गेहूं का एक दाना भी नहीं आया। खेत में भले ही गेहूं का दाना न हो, पर यह गेहूं है इसमें संदेह नहीं होता। कारण ये पहले भी गेहूं था और अंत में ये गेहूं रहेगा, अतः बीच में खेती रूप से अलग दिखते हुए भी ये गेहूं ही है। अभी तो यह हरी हरी घास दिखती है, पर बाद में पकने पर इससे गेहूं ही निकलेगा। इसी तरह संसार के पहले भी परमात्मा थे, सदैव सोमेदमग्र आसीद एकमेवाद्वितीयम्, छांदोग्य उपनिषद। अंत में परमात्मा ही शेष रहेंगे। शिष्यते शेष संज्ञा है श्रीमद् भागवत 10:23-25। अतः बीच में सब कुछ परमात्मा ही है, वासुदेव सर्वम। जब तक साधक में अहम है तब तक वह भोगी है। मैं योगी हूं, यह योग का भोग ही है। मैं ज्ञानी हूं, ये ज्ञान का भोग है। मैं प्रेमी हूं, ये प्रेम का भोग है। जब तक साधक में भोग रहता है तब तक उसके पतन की संभावना रहती है। जो योग का भोगी है वो कभी विषयों का भोगी भी हो सकता है, जो ज्ञान का भोगी है वो कभी अज्ञान का भोगी भी हो सकता है, जो प्रेम का भोगी है वो कभी राग का भोगी भी हो सकता है। कारण कि उसमें पहले से भोग की प्रवृत्ति आदत रही है। जब भोगी नहीं रहता तब केवल योग रहता है। योग रहने पर मनुष्य मुक्त हो जाता है, परंतु मुक्त होने पर भी महापुरुष ने जिस साधन से मुक्ति प्राप्त की है उस साधन का एक संस्कार अहम की सूक्ष्म गंध रह जाती है, जो दूसरे दार्शनिकों के साथ एकता नहीं होने देता। इस संस्कार के कारण ही दार्शनिकों में और उनके दर्शनों में मतभेद रहता है। अपने मत का संस्कार दूसरे दार्शनिकों के मतों का समान आदर नहीं करने देता, परंतु प्रतिक्षण वर्धमान प्रेम की प्राप्ति होने पर अपने मत का संस्कार भी नहीं रहता और सबके साथ एकता हो जाती है, अर्थात संपूर्ण मत भेद मिट जाते हैं और वासुदेव सर्वम का अनुभव हो जाता है। वास्तव में वासुदेव सर्वम का अनुभव करने वाला, इसको जानने वाला, कहने वाला भी नहीं रहता, प्रत्युत एक वासुदेव ही रहता है जो अनादि काल से ज्यों का त्यों है। सब में परमात्मा को देखने से संपूर्ण मतों में समान आदर भाव हो जाता है, क्योंकि अपने इष्ट परमात्मा से विरोध संभव ही नहीं है। निज प्रभुमय देखई जगत, कैसन करहिं विरोध। उत्तरकांड 112 नंबर का दोहा। ईश्वर और जीव के विषय में दो तरह का वर्णन है। ईश्वर समुद्र है और जीव उसकी तरंग है, अर्थात तरंग समुद्र की है, और दूसरा जीव समुद्र है और ईश्वर उसकी तरंग है, अर्थात समुद्र तरंग का है। इन दोनों में तरंग समुद्र की है ये मानना तो ठीक मालूम देता है, पर समुद्र तरंग का है ऐसा मानना ठीक नहीं देता है, क्योंकि समुद्र अपेक्षाकृत नित्य है और तरंग अनित्य है। अतः तरंग समुद्र की होती है, समुद्र तरंग का नहीं होता। अगर अपने को समुद्र और ईश्वर को तरंग मानेंगे तो इस मान्यता से अनर्थ हो जाएगा, क्योंकि ऐसा मानने से अभिमान पैदा हो जाएगा तथा अहम माने चित जड़ ग्रंथि तो नित्य रहेगी और ईश्वर अनित्य हो जाएगा। कारण कि जीव में अनादि काल से अहम का अभ्यास पड़ा हुआ है, अतः जहां स्वरूप को अहम कहेंगे वहां वही अहम आएगा जो अनादि काल से है। उस अहम के मिटने से ही मुक्ति होती है। उपर्युक्त दोनों बातों के सिवाय तीसरी एक विलक्षण बात है कि जल तत्व में न समुद्र है न तरंग है, अर्थात वहां समुद्र और तरंग का भेद नहीं है, यही वास्तविक बात है। समुद्र और तरंग तो सापेक्ष है पर जल तत्व निरपेक्ष है। जैसे जल तत्व में समुद्र नदी वर्षा ओस कोहरा भाप बादल आदि सब कुछ मिटकर एक हो जाते हैं, ऐसे ही वासुदेव सर्व में सभी साधन योग मार्ग मिटकर एक वासुदेव रूप हो जाते हैं। जैसे जल तत्व में कोई भेद नहीं है ऐसे ही वासुदेव सर्व में कोई भेद नहीं है। मतभेद से असंतोष होता है पर वासुदेव सर्व में कोई मतभेद न होने से सबको सर्वथा संतोष हो जाता है। वासुदेव सर्वम में न योगी है न ज्ञानी है न प्रेमी है, इसलिए इसका अनुभव करने वाला महात्मा अत्यंत दुर्लभ है। एक ही जल बर्फ कोहरा बादल ओला वर्षा नदी तालाब समुद्र आदि अनेक रूपों में हो जाता है। कढ़ाई में बर्फ डालकर उसको अग्नि पर रखा जाए तो बर्फ पिघलकर पानी हो जाएगी, फिर पानी भी भाप हो जाएगा और भाप परमाणु होकर निराकार हो जाएगा। जल ही कोरा रूप से होता है, वही बादल रूप से होता है, वही निराकार रूप से होता है, वही बर्फ रूप से होता है, वही ओड़ा रूप से होता है, वही वर्षा रूप होकर पृथ्वी पर बरसता है, वही नदी रूप से होकर बहता है, वही समुद्र रूप से होता है। अनेक रूप से होने पर भी तत्व से जल एक ही रहता है। इसी तरह एक ही भगवान अनेक रूप बन जाते हैं। जैसे जल ठंडक से जमकर बर्फ हो जाता है और गर्मी से पिघलकर तथा भाप बनकर परमाणु रूप हो जाता है, ऐसे ही अज्ञान रूपी ठंडक से भगवान स्थूल तथा जड़ संसार रूप से दिखते हैं और ज्ञान रूपी अग्नि से सूक्ष्म तथा चेतन वासुदेव रूप से दिखते हैं। जल चाहे बर्फ रूप से दिखे और चाहे भाप बादल आदि रूप से दिखे है वह जल ही, जल के सिवा कुछ नहीं है। ऐसे ही भगवान चाहे संसार रूप से दिखे चाहे अन्य रूप से दिखे है भगवान ही, भगवान के सिवाय और कुछ नहीं है। साधक से गलती होती है कि वह अपने को अलग रखकर संसार को भगवत स्वरूप देखने की चेष्टा करता है, अर्थात वासुदेव सर्वम को अपनी बुद्धि का विषय बनाता है। वास्तव में दिखने वाला संसार ही भगवत स्वरूप नहीं है, प्रत्युत देखने वाला भी भगवत स्वरूप है। सकल मिदमहं च वासुदेव, विष्णु पुराण तीसरा स्कंद सातवां अध्याय 32वां श्लोक। अतः साधक को ऐसा मानना चाहिए कि अपनी देह सहित सब कुछ भगवान है, अतः शरीर भी भगवत स्वरूप, इंद्रियां भी भगवत स्वरूप, मन भी भगवत स्वरूप, बुद्धि भी भगवत स्वरूप, प्राण भी भगवत स्वरूप और अहम मन मेपन भी भगवत स्वरूप, सब कुछ भगवान ही है। इसको मानने के लिए साधक को बुद्धि से जोर नहीं लगाना चाहिए, प्रत्युत सहजता में ऐसा है ऐसा स्वीकार करना चाहिए। सर्वम ब्रह्मात्मकम तस्य विद्यया आत्ममनीषया परिपश्यन उपरमेत सर्वतो मुक्त संशय है। श्रीमद् भागवत एकादश स्कंद 29वां अध्याय 18वां श्लोक। जब सब कुछ भगवान ही है ऐसा निश्चय हो जाए तब साधक इस अध्यात्म विद्या के द्वारा सब प्रकार से संशय रहित होकर सब जगह भगवान को भली भांति देखता हुआ उपराम हो जाए, अर्थात सब कुछ भगवान ही है यह चिंतन भी न रहे, प्रत्युत साक्षात भगवान ही दिखने लगे। तात्पर्य है कि सब कुछ भगवान ही है इस भाव से उपराम हो जाए, अर्थात न दृष्टा रहे न दृश्य रहे और न दर्शन ही रहे, केवल भगवान ही रहे। वासुदेव सर्वम का अनुभव अनेक दृष्टियों से हो सकता है, जैसे क्रिया पदार्थ और व्यक्ति का तो आदि और अंत होता है पर सत्ता निरंतर ज्यों की त्यों रहती है, इसलिए मनुष्य मात्र को क्रिया पदार्थ और व्यक्ति के अभाव का तो अनुभव होता है पर अपनी सत्ता के अभाव का अनुभव कभी नहीं होता, किसी को भी नहीं होता। इस नित्य निरंतर रहने वाली सत्ता का अनुभव होना विवेक की दृष्टि से वासुदेव सर्वम है। दूसरा, सृष्टि से पहले भी भगवान थे, पीछे भी भगवान रहेंगे, बीच में भी, भगवान के सिवाय दूसरा कैसे आ सकता है, इस युक्ति की दृष्टि से वासुदेव सर्वम है। मेरे तो एक भगवान ही है, भगवान के सिवा मेरा कोई है ही नहीं, और कोई है तो होगा, हमें उससे क्या मतलब। यह सीधे सरल विश्वासी साधक की दृष्टि से वासुदेव सर्वम है। जैसे ब्रज में एक साधु कुएं पर किसी से बातें कर रहा था कि ब्रह्म ऐसा होता है, जीव ऐसा होता है आदि आदि, वहां जल भरने के लिए आई एक गोपी ने ये बातें सुनी तो उसने दूसरी गोपी से पूछा, अरे वीर ये ब्रह्म जीवादि क्या होता है। वह गोपी बोली कि ये हमारे लाला के ही कोई सगे संबंधी होते होंगे, तभी साधु लोग उनकी बातें करते हैं, नहीं तो साधुओं को लाला के सिवाय और से क्या मतलब। चौथा, जिसके भीतर भगवत तत्व को जानने की व्याकुलता है, दिन में भूख नहीं लगती, रात में नींद नहीं आती, वह किसी संत से सुनकर अथवा पुस्तक में पढ़कर दृढ़ता पूर्वक मान लेता है कि सब कुछ भगवान है। अब भगवान कैसे हैं इसका तो पता नहीं, पर भगवान के सिवाय कुछ नहीं है, यह संत के वचनों पर विश्वास की दृष्टि से वासुदेव सर्वम है। संत वचन पर प्रत्यक्ष से भी बढ़कर विश्वास होने पर फिर वैसा ही दिखने लग जाता है और अनुभव होने लग जाता है। दार्शनिक दृष्टि से विचार करें तो सत्ता एक ही होती है, दो नहीं। श्रद्धा विश्वास की दृष्टि से देखें तो सब कुछ भगवान ही है, भगवान के सिवा कुछ नहीं है। भक्त की दृष्टि भगवान को छोड़कर दूसरी तरफ जाती नहीं और भगवान के सिवाय दूसरा कोई उसकी दृष्टि में आता ही नहीं।